ओम शांति। प्यारे बाबा ने हम बच्चों को मुरली में समय के खजाने का महत्व बहुत ही सुंदर तरीके से बताया, और पीछे भी अनेक बार बाबा ने समय के महत्व का वर्णन किया है। एक बात बाबा शुरू से कहते आ रहे हैं, और वो बात ये है कि बच्चे समय बहुत कम है। जब इस यज्ञ की स्थापना हुई थी, ओम मंडली की शुरुआत हुई थी, उस समय भी बाबा यही कहा करते थे कि बच्चे अगली दिवाली नहीं आएगी, संसार परिवर्तन होने वाला है। तो कई भाई बहनों के मन में ये सवाल पैदा होता है कि उसके बाद तो 70-72 वर्ष गुजर गए और बाबा ने कहा था कि अगली दिवाली भी नहीं आएगी, जबकि कितनी दिवालियां चली गई। और बाबा कहती हैं एवर रेडी एवर रेडी, लेकिन अभी तो बाबा का कार्य चल रहा है। अब ये जो बाबा ने कहा कि समय कम है, वास्तव में इसके पीछे एक बहुत गहरा राज है, क्योंकि भगवान की बातें साधारण नहीं होती। जैसे हम कहते हैं शिवरात्रि, तो ये 12 घंटे वाली रात की बात नहीं है। तो इसी तरह से जब बाबा कहते हैं अगली दिवाली नहीं आएगी, तो ये साधारण शब्दों में अगली दिवाली की बात नहीं है। जब बाबा ने यज्ञ की स्थापना की, तो उस समय बाबा के सामने केवल 300-350 या 400 बच्चे थे, और उस समय सारे विश्व की जनसंख्या आज अगर 650 करोड़ है, तो उस समय 400 करोड़ तो रही होगी। अगर 300 बच्चों को 400 करोड़ लोगों तक पहुंचना हो, तो विचार कीजिए समय कितना है। अगर 300 बच्चों के ऊपर 400 करोड़ लोगों की मुक्ति, जीवन मुक्ति की जिम्मेवारी हो, उन्हें स्वरूपस्थ करने की, उनके भक्ति का फल देने की जिम्मेवारी हो, तो कितना समय होगा। अगर वो साधारण रीति से अपने समय को गुजारी, तो वो 300-400 बच्चे क्या कर पाएंगे। इसलिए बाबा ने ये लक्ष्य दिया, अगली दिवाली की तो बात छोड़िए, कल का दिन भी नहीं आएगा, जो करना है वो आज ही करना है, अभी ही करना है, एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं गंवाना है। और बाबा ने ऐसे समय का महत्व जता करके उन बच्चों को समय को सदुपयोग करने की कला सिखाई। परिणाम क्या निकला, बच्चों ने बहुत कम समय नींद की, बहुत कम समय वाचा में आए, और अंदर ही अंदर गहन तपस्या के द्वारा 14 साल में अपने आप को भरपूर किया। अब धीरे धीरे दूसरे बच्चे भी आने लगे, बच्चों की संख्या बढ़ गई, लेकिन संसार की आत्माएं भी तो बढ़ गई। आज भले ही हम बढ़ते बढ़ते 9 लाख हो गए होंगे, 8-9 लाख हो गए होंगे, लेकिन इन 8-9 लाख बच्चों के ऊपर 650 करोड़ आत्माओं की जिम्मेवारी है। तो विचार कीजिए एक आत्मा के ऊपर कितनी जिम्मेवारी, और उसके पास कितना समय है। अगर इतनी जिम्मेवारी उसके ऊपर है, तो है ही नहीं समय, भले वो रात भर भी जागे तो भी उसके पास करने के लिए काम है। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे समय कम है, एवर रेडी रहना है, क्योंकि जिसके पास काम ज्यादा होता है उसके पास समय होता ही नहीं। जवाहरलाल नेहरू की बात सुनाती हैं कि वो अपनी टेबल के ऊपर एक इंग्लिश कवि की कविता की लाइनें हमेशा रखा करते थे, और उन इंग्लिश लाइनों का मीनिंग ये था कि भले ही एक यात्री के रास्ते में बहुत ग्रीनरी आती है, बहुत ही सुंदर आकर्षक दृश्य आती हैं, लेकिन उसे मीलों चलना है तो उसके पास उन दृश्यों को देखने का समय नहीं है, क्योंकि उसे मीलों चलना है। तो हम बच्चों को मीलों चलने का मतलब है, हम तो यात्री हैं, परम धाम के यात्री हैं, हमारी यात्रा तो दिन रात चलती है, ठहरती नहीं है, और परम धाम को कोई मीलों में माप भी नहीं सकता है। तो ऐसी बेहद की यात्रा के हम निमित्त हैं, तो हम किसी भी साइड सीन को देखने में समय कैसे लगा सकते हैं? हम कैसे अपने समय को व्यर्थ गंवा सकते हैं? इतनी महान यात्रा के हम यात्री हैं। दूसरी बात, जैसे बाबा ने इस मुरली में भी कहा, पिछली मुरली में भी कहा, बाबा ने कहा बच्चे एक सेकंड संगम युग का एक साल के बराबर है। सचमुच बाबा की इस बात में कितनी सत्यता, कितनी गहराई, और हम बच्चों को अलर्ट बनाने की कितनी युक्ति है। लौकिक दुनिया के हिसाब से हम देखें, जैसे एक बच्चा सारा साल पढ़ाई करता है और जब वो परीक्षा हाल में जाता है, उसे एक पेपर मिलता है और 3 घंटे का समय होता है, अधिकतर कहीं 2 का भी होता होगा, हो सकता है कहीं 1 का भी हो, अलग अलग हो सकता है। अब सारे साल की कमाई उसे 1 घंटे में दिखानी है, तो वो बच्चा क्या करता है? जिस घड़ी पेपर हाथ में आता है उस समय ये मान करके चलता है कि मुझे एक एक सेकंड का इतना सदुपयोग करना है। मान लीजिए लिखते लिखते उसके हाथ में दर्द हो जाए तो भी परवाह नहीं करेगा, अरे 1 घंटे की ही तो बात है, उसके बाद तो फ्री है। लेकिन ये 1 घंटा 1 साल को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसने मान लीजिए 1 साल बहुत मेहनत की और उस 1 घंटे में लापरवाही कर दी तो गया उसका साल। इसलिए 1 घंटा जो उसको मिला है पेपर हाल का, जो भी समय मिला है, वो इज इक्वल टू 1 साल है, 1 साल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से हम बाबा के बच्चे भी पेपर हाल में बैठे हुए हैं, सारा संगम युगी पेपर हाल है। इस समय हम जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जो रिजल्ट ले रहे हैं, जो अपने अंदर भर रहे हैं, वो पूरा 5000 वर्ष चलेगा। तो हम भी क्या समझते हैं, चाहे परिस्थितियां आए, चाहे बातें आए, लेकिन हमको अपना समय नहीं गंवाना, क्योंकि उसके बाद तो आराम ही आराम है, उसके बाद तो पेपर देना नहीं है, पढ़ाई पढ़नी नहीं है, उसके बाद तो कोई परिस्थिति और पेपर आना नहीं है। लेकिन अगर हमने इस समय किसी भी बात को देख करके अपने समय को खराब कर दिया तो 5000 साल की कमाई माइनस हो जाएगी। इसलिए 1 सेकंड गया माना 1 वर्ष गया, 1 सेकंड वेस्ट गया माना 1 वर्ष के बराबर कमाई वेस्ट गई, हमारे नंबर कम हो गए, हम इधर उधर देखने में सोचने में लग गए और हमारा जो लिखने का समय था, अपने आप को रिप्रेजेंट करने का समय था, वो तो चला गया। और दूसरी बात, जैसे कोई रेस में होता है, अब रेस में तो एक साथ हजारों दौड़ती हैं, देखा होगा एक पॉइंट होता है, वहां से 1 2 3 1 2 3 कहते हैं और बच्चे दौड़ लगाना शुरू करते हैं। एक पॉइंट होता है जहां तक उन्हें दौड़ना होता है, 1000 मीटर होता है या जितना भी हो, 600 मीटर हो। अब अगर बच्चे ने जरा सा भी पीछे मुड़ के देखा या बाजू वाले को देखा, ये कितना तेज दौड़ रहा है, तो वो तो पीछे छूट गया और इतनी देर में 10 20 50 बच्चे आगे निकल जाएंगे। पहले वो आगे था लेकिन उसने जरा सा पीछे मुड़ के देख लिया और इतनी देर में 50 बच्चे आगे निकल गए, 50 नंबर उसके कम हो गए। तो हम सब भी एक साथ दौड़ रहे हैं, बाबा ने हमको रेस करने का ये काम दिया है, ये बुद्धि योग की दौड़ी है। हमने अपने बुद्धि योग को थोड़ा सा भी लूज किया तो परिणाम क्या होगा, क्या पता कितने बच्चे हमसे आगे निकल जाएंगे। बाबा कहते हैं ना, माला में आने की भी रेस है, राजाई पद की भी रेस है। अब मेरा समय थोड़ा सा व्यर्थ गया, इतनी देर में तो कई आगे निकल गए, फिर हम दिल शिकस्त हो जाएंगे, अरे इतने मेरे से आगे हैं, मैं पीछे हूं, पता नहीं मैं गैलप कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो जो रेस में दौड़ने वाला होता है वो भी परवाह नहीं करता, पांव को कांटा भी लगेगा ना तो भी दौड़ता रहेगा, प्यास लगेगी ना तो भी दौड़ता रहेगा, थोड़ी देर की तो बात है, मैं दौड़ लेता हूँ, जब मैं पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा उसके बाद मैं सब ठीक कर लूंगा, लेकिन अभी बीच में नहीं रुकूंगा। तो बाबा ने भी कहा है, बच्चे सतयुग आएगा, वहां तो आराम ही आराम है, मौज ही मौज है, ना अमृत वेले उठना है ना पढ़ाई पढ़नी है, ये सब की सब चीजें संगम युग पर है। इस समय हम पुरुषार्थी हैं, इस समय हमको अपने नंबर जमा करने हैं। तो जो पढ़ाई का पीरियड होता है और बाद में परिणाम निकल आता है, परिणाम निकलने के बाद तो ना कोई किताबों को पूछता है, ना उसको समय की इतनी कीमत रहती है, लेकिन जब तक परीक्षा नहीं हो जाती तब तक वो किताबें वो पढ़ाई सब इम्पोर्टेंट रहता है। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं, जब तक आपका परिणाम घोषित नहीं हुआ तब तक आपका एक एक सेकंड एक वर्ष के बराबर है। आप अपने को देखो, अपने समय को देखो, उसे सफल करने की कोशिश करो, दूसरे को नहीं देखो। तीसरी बात, समय के बारे में अक्सर ये कहा जाता है बोलचाल की भाषा में कि ये समय बड़ा भारी है, या कई कहते हैं समय बड़ा बलवान है, या जैसे बाबा कहते हैं बच्चे संगम युग का समय बड़ा महान समय है, बड़ा कल्याणकारी समय है, ऐसा समय सारे कल्प में फिर नहीं आएगा। तो गहराई से अगर हम सोचें तो समय तो वास्तव में न्यूट्रल है, लेकिन समय की महानता या समय का बलवान होना मनुष्य के कर्मों के ऊपर आधारित है, और जैसे जैसे मनुष्य के कर्म होते हैं वैसा वैसा ही समय को टाइटल मिलता है। जैसे सतयुग को हम सत्ययुग कहते हैं, वो सतयुग का समय था, समय तो वही था लेकिन मनुष्य सच्चे थे इसलिए वो सतयुग था। त्रेता धर्म की, धर्म के तीन पांव थे इसलिए त्रेता, द्वापर दो पांव रह गए, कलयुग एक ही पांव रह गया इसलिए कलयुग को लोगों ने कहा समय बड़ा खराब है। तो बाबा कहते हैं संगम युग का समय भी महान है, क्योंकि हम बच्चे परमपिता परमात्मा से महान बन रहे हैं, सीख रहे हैं, इसलिए हमारे लिए महान है। लेकिन जिनको संग भगवान का नहीं है उनके लिए क्या है, साधारण समय है, जैसा पहले था वैसा ही अब है। तो समय की महानता समय की पहचान से है, जिसने समय को पहचाना उसके लिए समय महान है, जिसने समय की महानता को नहीं पहचाना उसके लिए समय साधारण है। तो क्या मुझे इस समय की पहचान हर घड़ी रहती है, क्या मुझे हर घड़ी ये स्मृति रहती है कि मैं संगम युग पर हूं, भगवान मेरे साथ है, ये जमा करने का समय है, मैं साधारण नहीं हूं, मेरी कोई चाल चलन साधारण नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैं साधारण बालक नहीं हूं, साधारण पिता का बालक नहीं हूं, मैं महान से महान परम पिता का बालक हूं। तो मेरा हर सेकंड, हर संकल्प, हर श्वास कितना महान होना चाहिए। तो जब ये स्मृति इमर्ज रूप में रहती है तब हम समय के खजाने को सफल करते हैं, और अगर ये स्मृति थोड़ी सी लूज हो गई, थोड़ी सी मर्ज हो गई, थोड़ा सा हमने इसके प्रति लापरवाही की तो फिर समय के खजाने का महत्व भी कम हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तीन बातें कभी नहीं भूलो, नंबर एक ये समय कौन सा है, नंबर दो मैं स्वयं कौन हूं, और नंबर तीन संयम, मुझे संयम के साथ रहना है, अपनी हर एक्टिविटी के ऊपर संयम रखना है। ये तीन शब्द हमेशा हमको स्मृति में रहे। पिछले साल बाबा ने एक मुरली में कहा था, जैसे बहुत सारी बातें बाबा ने कही थी, वाणी के द्वारा ज्ञान का दान दो, कर्म के द्वारा गुणों का दान दो, पिछली सीजन की जो पहली मुरली थी। लेकिन उसमें एक बात जो खास अंडरलाइन करने वाली थी, चिंतन करने वाली लगी, वो ये थी, बाबा ने कहा बुद्धि के द्वारा समय का दान दो। तो विचार चला कि बुद्धि का और समय का आपस में क्या कनेक्शन है। बुद्धि के द्वारा समय का दान दो, वास्तव में समय का कनेक्शन बुद्धि के साथ ही है, क्योंकि बुद्धि जब उलझती है तो समय बर्बाद होता है, और लाइन जब क्लियर होती है तो 10 मिनट का काम 1 मिनट में पूरा होता है। एक बार ऐसे ही मैं एक कारागार में, जेल में गई थी, तो मैंने कैदियों को कहा, कैदी भाई बहनों को कहा कि आप लोगों के पास तो बहुत समय है, जो लोग घर परिवार में रहती हैं उन लोगों के पास समय नहीं होता, उनको बहुत काम करने पड़ते हैं, कहीं ऑफिस की जिम्मेवारी है, कहीं घर की जिम्मेवारी है, बाल बच्चों की है, लेकिन आप लोग तो यहाँ इन सब जिम्मेवारियों से छूटे हुए हो, तो जैसे आप भगवान को याद करो तो आपका बहुत खाता जमा होगा, हम उनको ऐसे बोल रहे थे। तो एक कैदी ने कहा, बहन जी हम तो बिल्कुल बिजी, हम तो बिल्कुल खाली नहीं। तो मुझे बड़ा आया, मैंने कहा खाली क्यों नहीं है, बना बनाया लगभग मिलता है और कोई कमाने का भी नहीं है। तो उसने कहा, आपको पता हम सोचने में कितने बिजी हैं, रात को भी हम जागते हैं। तो समय किसमें खराब जा रहा है, सोचने में जा रहा है, बुद्धि उलझी हुई है, बुद्धि में अनेक प्रकार के संकल्पों के टकराव है, काम की जिम्मेवारी नहीं है, लेकिन बुद्धि में विचारों का जो टकराव है उसके कारण दिन भी खराब और रात भी खराब। अब बाबा ने हम बच्चों को काम करने से नहीं छुड़ाया, लेकिन बुद्धि के टकराव, बुद्धि के उलझाव और बुद्धि में जो अनेक प्रकार की व्यर्थ बातें आती हैं उनसे हमको बचा लिया। तो समय बच गया, क्योंकि कार्य करने में समय वेस्ट नहीं जाता। हम कितना भी कार्य करें, अगर हमारी लाइन क्लियर है तो हमारा समय जमा हो रहा है, हमारा खाता बन रहा है। लेकिन भले हम खाली बैठे हैं लेकिन लाइन क्लियर नहीं है तो भी हमारा वेस्ट जा रहा है। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को कर्म योगी बनाया, क्योंकि एक तरफ हम कर्म के द्वारा जमा करेंगे और दूसरी तरफ हम योग के द्वारा जमा करेंगे, डबल कमाई होगी। कर्म सन्यासी नहीं बनाया। दुनिया में हमको दो प्रकार के लोग देखने को मिलते हैं, एक तो वो लोग हैं जो कर्म से नफरत करते हैं, वो ये समझते हैं कर्म करेंगे तो कर्म के बंधन में बन जाएंगे और वो घर बार कर्म छोड़ करके सन्यासी बन जाते हैं, और दूसरी तरफ संसार में वो लोग हैं जो कहते हैं कर्म ही पूजा है, जगह जगह लिखा होता वर्क इज वर्शिप, वो कहते काम करो काम करो, रात और दिन काम करो। काम करते हुए ईर्ष्या द्वेष आती है, बदले की भावना आती है, बुद्धि उलझती है, व्यर्थ विचार आते हैं, किसी के प्रति दुर्भावनाएं आती हैं, उनके प्रति उनका कोई ध्यान नहीं है। वो कहते हैं बस कर्म करो कर्म करो, कर्म करना ही पूजा है। लेकिन बाबा ने हमको क्या सिखाया, बाबा कहते हैं बच्चे पूजा के समय तो मन शांत होता है, जब आदमी पूजा करता है तो उसके विचार शुद्ध होते हैं, जब आदमी पूजा करता है तो उसके चेहरे पे उमंग होती है, उसके सामने उसका इष्ट होता है। अगर कर्म पूजा है तो संसार के लोग जब कर्म करते हैं तो क्या उनके मन में शांति होती है, क्या उनके मन में उमंग उल्लास होता है, क्या उनको खुशी होती है कि हम पूजा जैसा पवित्र कर्म कर रहे हैं। आज तो वर्क वास्तव में वॉरशिप हो गया है, चाहे कोई घर में काम कर रहा है, चाहे कोई ऑफिस में काम कर रहा है, चाहे कोई व्यवसाय में है, लेकिन कर्म करते हुए इतनी तरह के मन के अंदर जटिलताएं आती हैं कि व्यक्ति पूरी तरह से जैसे कर्म के अधीन है, जैसे कर्म कूट रहा है। तो बाबा ने कहा, न तो कर्म का त्याग अच्छा है और न ही केवल कर्म के वशीभूत हो जाना अच्छा है, दोनों ही गलत, दोनों ने ही संसार को बिगाड़ा है। काम तो संसार में करने वाले करोड़ों लोग, लेकिन फिर भी संसार का पतन हो रहा है, क्योंकि कर्म करते हुए कमाई नहीं हुई। बाबा ने दोनों के बीच का रास्ता हमको दिया, ना तो सन्यासी बनो और ना काम में उलझो। बीच का रास्ता क्या है? अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर्म करो, कर्म अवश्य करो, अपनी इंद्रियों को अलर्ट और एक्टिव रखो, एक एक इंद्री से पुण्य का खाता जमा करो, आंखों के द्वारा वरदान दो, दुआएं बरसाओ, शांति बरसाओ, कानों के द्वारा पवित्र वचन सुनो, मुख के द्वारा ज्ञान रतन बोलो। तो यूज हो गया ना इंद्रियों का, यूज नहीं होगा तो जंक लग जाएगी, लेकिन सदुपयोग करो, कितना करो, जितनी आवश्यकता है, उसकी भी बाबा ने लिमिट बताई। आवश्यकता पूरी हो गई उसके बाद कछुए की तरह से सिकोड़ लो। दोनों बातें बताई, करो भी और आवश्यकता प्रमाण सिकोड़ो। तो परिणाम क्या निकला? हम बच्चे कर्म भी करते हैं और कर्म से न्यारे भी रहते हैं, संसार में भी रहते हैं, संसार से न्यारे भी रहते हैं, संबंधों के बीच में भी हैं, लेकिन संबंधों के बंधन से मुक्त भी हैं, फर्श पे हैं, लेकिन फर्श पे रहते भी जैसे अर्श की अनुभूति करते हैं, जीवन में हैं, लेकिन जीवन में जीवन बंद नहीं, लेकिन जीवन मुक्त स्थिति की अनुभूति करते हैं, भले ही हम जमीन पर चलते हैं लेकिन फरिश्तों की तरह से उड़ने का अनुभव करते हैं, क्योंकि कर्म अपनी आवश्यकता के लिए करते हैं और किसी के कर्म का कर्ज हमारे ऊपर नहीं चढ़ता है, और कर्म करते हुए भी बुद्धि को फ्री रखते हैं, इसलिए होते हुए भी नहीं है। जैसे राजा जनक की जीवन मुक्ति का वर्णन है ना, कि जब उसने कहा कि घोड़े पर जब वो चढ़ रहा था तो एक पांव घोड़े की काठी पर और एक नीचे, तो अष्टावक्र ने पूछा, राजा कहाँ हो? जमीन पर, बोला नहीं, तो बोला जमीन से ऊपर, बोला नहीं, कहाँ हो? दोनों जगह, एक पांव जमीन पर और एक पांव काठी पर। तो हम भी दोनों जगह हैं, संसार में भी हैं और संसार में नहीं भी हैं, लेकिन ये युक्ति बाबा ने कर्म योग के द्वारा सिखाई, न तो कर्म में उलझना है न कर्म का संन्यास करना है। इसलिए हम बच्चों का एक एक सेकंड सफल हो सकता है, कर्म करते हुए भी हर एक सेकंड हम कमाई जमा कर रहे हैं। हम देखते हैं कि समय को बढ़ाया नहीं जा सकता, कहते हैं ना समय कोई रबड़ नहीं है, सबके पास 24 घंटे का समय है, लेकिन समय को बढ़ाया जा सकता है, वो भी बाबा ने हमको युक्ति बताई है। कैसे बढ़ाया जा सकता है? बाबा कहते हैं अगर आप गुणवान बन जाएंगे ना तो समय बढ़ जाएगा, अगर आप अधिक उदार बन जाएं समय बढ़ जाएगा, अधिक क्षमाशील बन जाएं समय बढ़ जाएगा, अधिक सहनशील बन जाएं समय बढ़ जाएगा। क्योंकि जब हम सहनशील बन जाएंगे तो थोड़े समय में अधिक काम करेंगे, अक्षमाशील बन जाएंगे तो थोड़े संकल्पों में अधिक उपलब्धि करेंगे, अधिक उदार बन जाएंगे तो थोड़े से समय में अधिक लोगों को संतुष्ट कर पाएंगे। तो समय बढ़ गया ना, तो जितने जितने हम गुणवान बनेंगे, समय कम और प्राप्ति अधिक होगी। और गुणों की कमी के कारण क्या होता है, बहुत सारा समय लगाकर के हम थोड़ी सी भी उपलब्धि नहीं कर पाते। इतना समय लगाया, इतना सोचा और मिला क्या, देखो ना कुछ भी नहीं प्राप्ति हुई, तो कितना समय छोटा हो गया। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को कहा, बच्चे आपका एक एक संकल्प इतना पावरफुल होना चाहिए, जैसे कोई निशाना लगाता है ना, तो एक तो ऐसी होता है कि भाई उसने 50 गोलियां मारी तब जाकर के एक निशाने पे लगी, तो 49 गोलियां क्या हो गई, वेस्ट गई। और एक ऐसा निशानेबाज होता है कि एक ही गोली फेंकता और सीधी जाकर के निशाने पे लगती है। तो एक ही संकल्प किया और उससे सिद्धि हो गई, समय बच गया। इसलिए संगम युग में हम अपने संकल्पों को पावरफुल बना करके, सिद्धि स्वरूप बना करके अपने समय की बचत कर सकते हैं। समय को नष्ट करने वाली और समय को सफल करने वाली बाबा ने अनेक विधियां हमको बताई हैं, कारण बताए हैं। जैसे बाबा कहते हैं, बच्चे सबसे ज्यादा समय खराब कौन सी शक्ति की कमी के कारण होता है, सबको अनुभव है, जब हमारे में कौन सी शक्ति नहीं होती है तो समय बहुत व्यर्थ जाता है, दुनिया में भी लोगों का समय व्यर्थ जाता है, और वो शक्ति है निर्णय शक्ति की कमी, क्या करूं क्या नहीं करूं, इतना करूं के इतना करूं, इससे मिलूं के उससे मिलूं, इस समय करूं के उस समय करूं। तो समय के बारे में निर्णय, व्यक्ति के बारे में निर्णय, कर्म के बारे में निर्णय, इसमें हमारा समय व्यर्थ जाता है। निर्णय क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि परखने की शक्ति नहीं। निर्णय तभी तो करेंगे ना जब पहले अच्छे से परखेंगे और अपनी परखी हुई बात के ऊपर विश्वास होगा कि मैंने ये जो परखा है ये बिल्कुल ठीक है। और अगर अंदर डामाडोल होंगे, पता नहीं मेरी परख ठीक है कि नहीं है, उससे पूछूं, उससे राय लूं, अगर दूसरे ने राय दी और परिणाम अच्छा नहीं निकला, हम कहेंगे भाई तूने मेरे को गलत राय दी, तो वो बोलेगा मैंने थोड़े कहा था मेरे से राय लो, क्यों ली आपने राय, आप अपनी बुद्धि से ना काम करते। और बाबा ने हमको इस मुरली में भी कहा कि सतयुग में जो राजा होगा उसकी निर्णय शक्ति इतनी अच्छी होगी कि उसको वजीर की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप डिसीजन लेगा, एक सेकंड में डिसीजन लेगा। यह टाइम क्यों जाता है, लोग कहते हैं सरकारी काम बड़े धीरे धीरे होते हैं, सुना है ना, नौ दिन चले 2.5 कोस, क्यों धीरे धीरे होते हैं, क्योंकि वो निर्णय नहीं ले पाते। 10 ऑफिसर बैठे, बात निर्णय, भाई आज की बैठक बिना निर्णय के पूरी हो गई, कल बैठेंगे, कल फिर बैठे, फिर जरा सा निर्णय लिया, फिर अच्छा मान लो निर्णय ले लिया, उसके बाद ऊपर भेजा, ऊपर वालों ने उस निर्णय को कैंसिल कर दिया, अब ऊपर वाले बैठक कर रहे हैं, नहीं भाई अभी, तो एक बात का निर्णय होने में उनको कई साल लग जाते हैं। इतने में कितना समय, कितना धन, क्या क्या नष्ट हो जाता है। और सतयुग का राजा क्या करेगा, एक सेकंड में निर्णय लेगा, अकेला निर्णय लेगा, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। तो सतयुग का एडमिनिस्ट्रेशन कितना अच्छा होगा, ना राजा उलझेगा ना उसकी प्रजा उलझेगी। तो बाबा हमको ऐसा एक्सपर्ट बनाना चाहता है कि हम हर बात में एक सेकंड में निर्णय ले सके, और निर्णय शक्ति परख शक्ति से अच्छी होगी। और परख शक्ति कब आती है, एक बहुत मोटा सा मिसाल हम हमेशा देखते सुनते अनुभव करते हैं, जैसे पानी बिल्कुल स्थिर होता है तो हम परख सकते हैं पानी के नीचे काई है या मछलियां हैं या क्या है, लेकिन अगर पानी थोड़ा गंदला हो, हिल रहा हो, तो उसके नीचे क्या पड़ा है दिखाई नहीं देता। तो बाबा कहते हैं जब आपकी मनोवृत्ति स्थिर होती है तो आप परख सकते हो और परखने के बाद ठीक निर्णय ले सकते हो। तो मनोवृत्ति बिल्कुल स्थिर चाहिए, डामाडोल नहीं चाहिए। और मनोवृत्ति स्थिर हो इसकी निशानी क्या है, जैसे दिखाते हैं ना न्याय की देवी के हाथ में तराजू है, तराजू के ऊपर में एक सुई होती है। आजकल तो कंप्यूटर वाले तराजू आ गए, लेकिन पुराने जमाने में जब वो सुई स्थिर हो जाती थी तब लोग कहते थे भाई चीज का पूरा माप हो गया। तो बाबा कहते हैं जब आपकी बुद्धि रूपी सुई बाबा के ऊपर स्थिर है तभी आप ठीक परख सकेंगे और निर्णय कर सकेंगे। अगर सुई स्थिर हुई ही नहीं तो परख भी ठीक नहीं है और निर्णय भी ठीक नहीं। और फिर जैसे उसके दो तराजू दिखाते हैं, तराजू के दो पलड़े दिखाते हैं, वो पलड़े निष्पक्षता का प्रतीक। ठीक निर्णय कब लेंगे, जब निष्पक्ष होंगे। अगर हमारे मन में पक्षपात है, हम देह को देख करके, जाति को देख करके, कुल को देख करके पक्षपात करते हैं तो निर्णय कैसे ठीक होगा। एक तरफ पलड़ा झुकेगा। एक बहुत समय पहले की बात है, अब तो एक बहुत पुराना भाई, बाबा का बच्चा बना, जज था वो किसी कोर्ट में। तो जब बाबा का बच्चा बना तो उसने बिल्कुल अपना सत्य अनुभव सुनाया। उसने कहा कि आज से पहले, माने ज्ञान लेने से पहले, जब मैं कोर्ट में निर्णय करता था तो मेरी दैहिक दृष्टि रहती थी और मुझे ये तो पता ही होता था कि ये जो दो पक्ष है इसमें से कौन सा किस जाति का है, कौन सा किस जाति का है, तो ऑटोमेटिक मेरा पलड़ा मेरी जाति वाले की तरफ झुक जाता था। मान लो एक मेरी जाति का और दूसरा दूसरी जाति का है। तो जब मैं यहाँ आया और मुझे पहला पाठ ये बहनों ने पढ़ाया कि आप शरीर नहीं है, आत्मा है। शरीर चाहे किसी भी जाति का हो, चाहे किसी भी कुल में पैदा हुआ हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी देश का हो, लेकिन उस शरीर के भीतर जो आत्मा है वो तो बिना कुल धर्म जाति की है, वो तो केवल परमात्मा की है। तो इस हिसाब से सब आत्माएं एक समान है। और अगर हम पक्षपात एक के साथ करेंगे तो हमारे हिसाब में आ जाएगा, वो हमको भी उसका जवाब देना पड़ेगा। तो जब मैंने पहले दिन ये वाला पाठ पढ़ा तो मेरे को अपने सारे निर्णय याद आ गए। मैंने उस समय ये वाला किया था, ये वाला किया था, ये पक्षपात किया था और मुझे बड़ा पश्चाताप हुआ। और उसके बाद मैंने दृढ़ निश्चय किया कि आज के बाद जब भी मैं निर्णय करूंगा तो आत्मा देख करके करूंगा। जो भी मेरे सामने पार्टी आएगी उसके मस्तक में देखूंगा। जैसे बाबा ने मुरली चलाई तो बाबा ने क्या बोला, बाबा जगमगाते हुए आत्मदीप देख रहा है। तो बाबा के बच्चों को भी जब ज्ञान मिल जाता है तो वो भी क्या देखना शुरू कर देते हैं, जगमगाते हुए आत्मदीप। चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे घर का है, चाहे घर से बाहर का है, चाहे जाना हुआ है, चाहे जो भी है, तो जब हम आत्मदीप को देखेंगे तो हमारे मन में निष्पक्षता आएगी। जब निष्पक्षता आएगी तो निर्णय ठीक होगा और जब निर्णय ठीक होगा तो समय की बचत होगी। इसलिए बार बार हमको दूसरों को आत्मा देखने का अभ्यास बढ़ाना है। हर स्थान पे, केवल क्लास में बैठे हैं तभी हम आत्मा देख रहे हैं, नहीं। जब हम ट्रेन में सफर करते हैं तो जितने भी कंपार्टमेंट में भाई बहन बैठे हैं सब कौन है, ये सब भी आत्माएं हैं, बाबा के बच्चे हैं। चाहे वो ज्ञान को जानते हैं चाहे नहीं जानते हैं, लेकिन है तो सब दीपक, सब है तो आत्मा रूपी दीपक। तो जहां भी है, और ब्राह्मणों की परीक्षा तो हर स्थान पे हो जाती है, जिसको ये मालूम है ये बीके हैं तो वो जानबूझ करके भी उससे कोई ना कोई बात करेगा, उसके कर्मों को देखेगा, बहुत अटेंशन से लोग देखते हैं। एक बार मैं कहीं ट्रेन में थी तो मेरे पास एक बाबा का कोई था, पोली बैग था, तो एक भाई ने मुझे कहा कि आपकी संस्था में ये सकारात्मक चिंतन और ये सेल्फ मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये इतने सारे प्रोग्राम होते हैं क्या, तो मैंने कहा भाई आप जाते हो क्या, आपको कैसे पता पड़ा? 8-10 प्रोग्रामों के उसने नाम लिए। बोला नहीं, ये जो आपके पास पोली बैग है ना, इसके ऊपर इन सब के नाम लिखे हुए हैं। मैंने तो उस पोली बैग को पढ़ा भी नहीं था, मुझे किसी ने दिया था। तो लोग कितना ध्यान से देखते हैं, बैग को भी देखेंगे, आपकी बोलचाल को भी देखेंगे, आप बैठे होंगे तो पास में आके बैठेंगे भी, अगर आप बैठने की जगह नहीं देंगे तो भी महसूस करेंगे कि देखो ये। वैसे तो कहते हैं हम सबको ज्ञान सुन, सब हमारे ही हैं, सब भगवान के बच्चे हैं, लेकिन मैंने बैठने की जगह मांगी तो मेरे को बैठने की जगह नहीं। बाद में फिर वो क्या करते हैं, उस शहर में जाते हैं, प्रोग्राम होता है, वो बहन जी प्रवचन करने आती है तो उठ करके उसको पूछते हैं, हम जब ट्रेन में गए थे ना तो आपके, हमको बहुत सारे भाई बहन मिले थे, लेकिन फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? आप ज्ञान तो दूसरा सुनाते हो लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? फिर उनको बताना पड़ता है भाई उनके पास कुछ कीमती चीजें होती हैं तो इसलिए वो अपनी संभाल के कारण किसी को नहीं बिठाते, फिर तो थोड़ा बताना पड़ता है। पर लोग ध्यान कितना देते हैं, और किसी पर इतना ध्यान नहीं देते जितना वो हमारे ऊपर ध्यान देते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे सदा दूसरे को आत्मिक दृष्टि से देखने का अभ्यास करो तो निर्णय शक्ति ठीक होगी, और निर्णय शक्ति ठीक होगी तो समय की बचत होगी। और दूसरा बाबा ने कहा किसी भी घटना में समय को बचाने के लिए फुल स्टॉप लगाना सीखो। देखो आजकल बड़ी महंगी महंगी कारें निकली हैं। एक कार ऐसी होती है समझो 200 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, अब कितनी स्पीड होगी उसकी? भारत में तो नहीं होगी लेकिन विदेश में तो होती होगी, बहुत अच्छी स्पीड वाली बढ़िया कारें। लेकिन जिस कार की जितनी ज्यादा स्पीड उतना उसका पावरफुल ब्रेक। अगर स्पीड तेज हो और ब्रेक पावरफुल ना हो तो क्या होगा? तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं बच्चे सेवा के लिए सोचो, सोचना तो पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है। हमारी सेवाएं बढ़ रही हैं, जिम्मेवारियां बढ़ रही हैं, हमारी प्रवृत्ति बढ़ रही है, बाबा के बच्चे भाई बहने बढ़ रही हैं, तो उसके लिए योजना बनानी पड़ती है, प्रोग्राम बनाने पड़ते हैं, अनेक तरह से अनेक पहलुओं से सोचना पड़ता है। सोचे बिना तो हम नहीं रह सकते, लेकिन जितना सोचना जरूरी है उतना ही फुल स्टॉप लगाना भी जरूरी है। हमें सोचना तो आता है, सबको आता है, प्लानिंग करनी आती है, विस्तार करना आता है, विस्तार भी करना पड़ता है, लेकिन जैसे रबड़ होता है ना, उसको अपन खींच करके लंबा करते हैं फिर क्या होता है, वापस अपने स्थान पे आ जाता है। अगर हमारी बुद्धि भी ऐसी हो जाए, जब हमने चाहा इसका विस्तार किया, कई पहलुओं से बात को सोचा और उसके बाद तुरंत वो अपने स्थान पे आ गई, फुल स्टॉप लग गया, स्वरूप में टिक गई, सोचने का काम पूरा हो गया। ये अभ्यास चाहिए, जब चाहे विस्तार में ले आए, जब चाहे सार में ले आए। जब ये अभ्यास होगा तो समय बचेगा, समय का खजाना सफल होगा। बाबा ने कहा फुल स्टॉप कौन लगा सकेगा? फुल स्टॉप लगाने में कौन सफल होगा? बाबा हंसी हंसी में कहता है ना कि जैसे कई बार फुल स्टॉप लगाना चाहते हैं लेकिन हाथ हिल जाता है तो दूसरा ही कुछ लग जाता है, लंबा निशान हो जाता है या क्वेश्चन वाला निशान हो जाता है। तो फुल स्टॉप लगाना चाहते हैं लेकिन बुद्धि हिल जाती है तो दूसरा निशान लग जाता है। तो बुद्धि हिले ना, उसके लिए बाबा ने क्या युक्ति बताई? फुल स्टॉप वो लगाएगा जिसके पास फुल स्टॉक होगा, ज्ञान गुण शक्तियों का फुल स्टॉक होगा, जो बात आई उसके समाधान के लिए स्टॉक है, जो परिस्थिति आई उसका उत्तर देने के लिए हमारे पास फुल स्टॉक है, तो हमने तुरंत फुल स्टॉक लगा दी। कई बार हम क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने कोई काम किया और काम करने के बाद ये विचार आता है कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करते थे। जैसे मान लो नया साल आया, दिवाली आई, अपन किसी को गिफ्ट देते हैं, तो कई भाई बहन अनुभव सुनाते हैं कि जैसे हमने एक को कोई चीज दी, फिर कोई दूसरा आया तो मन में आता, अरे वो इसको नहीं इसको देनी थी, चीज तो दे दी लेकिन संकल्प चल रहे हैं उसको नहीं, गलती कर दी, उसको नहीं देनी चाहिए थी, इसको देनी चाहिए थी। अब क्या हुआ, मैं संतुष्ट नहीं, मना देने वाला संतुष्ट नहीं, और जिसको हमने दी उसके प्रति हमारा शुभ संकल्प नहीं, और जिसको हम देना चाहते हैं उसको वो चीज मिल नहीं सकती, तो समय तीनों का ही खराब है। इससे बचने के लिए क्या करो, केवल चीज की बात नहीं है, कोई भी कर्म जो हो गया होने के बाद उसके लिए शुभ भावना करो, दुआ दो, बाबा मैंने ये चीज जिसको दी वो उसको लेकर के आगे बढ़े, उसकी उन्नति हो, मेरी वो चीज सफल हो, चाहे जहां भी गई। अगर हम ये संकल्प करते हैं तो फुल स्टॉप लग गया, अगर हम दूसरा संकल्प करते हैं तो उसका तो अंत ही नहीं है, ऐसे नहीं करता तो ऐसे हो जाता, ऐसे नहीं करता तो ऐसे हो जाता, अगर ये ना बोलता तो ऐसे हो जाता, वहां ना जाता तो ऐसे हो जाता, उसका तो अंत ही नहीं, जीवन भर ऐसे ही करते रहेंगे। जैसे कई कई नए भाई बहन या जो अभी बाबा के बच्चे नहीं बने हैं, कई बार कहते हैं ना कि बहन जी मैं बनना तो डॉक्टर चाहता था लेकिन मैं बिजनेस में आ गया, अब मन में ख्याल आता है कि मैं डॉक्टर बनता तो अच्छा था, अब डॉक्टर वो बन नहीं सकता, बिजनेस करने में उसका मन लगता नहीं है, अब वो बेचारा दोनों तरह से गया, अब जो बन गए उसी में मन लगाओ ना, उसी में आपको बहुत फायदा हो जाएगा, तो जो हो गया उसी को दुआएं दो ना, उसी से फायदा हो जाएगा, जो कर्म हो गया उसमें अब शुभ भावना का जल डालते रहो। हमने कर्म किया माना बीज बोया, तो बीज बोने के बाद क्या करना पड़ता है, बीज बोने के बाद उसमें पानी डालना पड़ता है बड़े प्यार से, तब उस बीज का फल निकलता है। मान लो हमने बीज बोया और फिर उसको खोद दिया, नहीं नहीं ऐसे नहीं इधर बोता तो अच्छा था, उसके बाद फिर उखाड़ दिया, नहीं नहीं इधर बोता तो अच्छा था, उसके बाद फिर उखाड़ दिया, नहीं नहीं इस वाली जमीन में बोता तो अच्छा था, तो परिणाम क्या निकलेगा, फल निकलेगा क्या, कभी हम तो लगे रहेंगे उसी काम में, ना बीज बोया ना फल निकला। तो जो कर्म हो गया, जो बीज बो दिया, अब उसमें शुभ भावना का पानी डालो, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ बहुत बढ़िया हुआ, जो हुआ वही कल्याणकारी था, जो अच्छा था करण करावन हार ने मेरे से वही करवाया, ड्रामा में यही नून थी, ड्रामा कल्याणकारी है तो ये कर्म भी कल्याणकारी है, इस कर्म का बढ़िया फल अवश्य निकलेगा क्योंकि ये शुभ समय में बोया गया है, बाबा भी कल्याणकारी, मैं भी कल्याणकारी, समय भी कल्याणकारी, तो कर्म का फल भी कल्याणकारी। तो अपने उस किए गए कर्म को खूब शुभ भावनाओं से सींचो तो उसका बहुत बढ़िया फल निकलेगा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे जो हुआ वो भी बहुत अच्छा, जो हो रहा है वो भी बहुत अच्छा, और जो आगे होगा वो परम अच्छा। बाबा ने बहुत सुंदर शब्द बोला, वो परम अच्छा। समय के खजाने को सफल करने के लिए एक और इम्पोर्टेंट बात बाबा बताते हैं कि बच्चे कर्मेंद्रियों से उतना ही उठाओ जितने की आवश्यकता है। जैसे मान लीजिए कोई अनावश्यक चीज है और उसमें हमने हाथ डाल दिया तो क्या होता है, हाथ को वो चीज चिपक जाती है, फिर हमको उतारने में मेहनत करनी पड़ती है, उतारने में मेहनत करनी पड़ती है, कितना परेशान होते हैं हाथ को क्या चिपक गया। तो इन इंद्रियों के द्वारा अगर हम किसी ऐसी चीज को उठा लेते हैं कोई ऐसी चीज हमको चिपक जाती है, फिर क्या होगा? फिर उसको उतारने की मेहनत करनी पड़ेगी। और चिपकने में समय थोड़ा लगा, लेकिन उतारने में तो बहुत समय लगाना पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखना है कि कोई भी इंद्रिय कहीं भी लिपायमान ना हो। बहुत अटेंशन की बात है ये, ध्यान देने की बात। हम स्टूडेंट है ना, तो स्टूडेंट अपनी हर बात के ऊपर ध्यान रखता है। और स्टूडेंट भी साधारण नहीं है, भगवान के विद्यार्थी हैं, भगवान के स्टूडेंट। तो इतने बड़े टीचर के विद्यार्थी कोई साधारण तो नहीं हो सकते। कितने अलर्ट, कितने एक्टिव अपने हर कर्म के प्रति। तो समय के खजाने को सफल करना माना, समय के साथ हमारा श्वास जुड़ा हुआ है, समय के साथ हमारा संकल्प जुड़ा हुआ है। अकेला समय सफल नहीं होता, समय के साथ श्वास भी सफल होते हैं, संकल्प भी सफल होते हैं। अगर संकल्प निष्फल गए तो समय सफल कैसे होगा? इसलिए समय को सफल करना माना संकल्पों को सफल करना। अगर व्यर्थ संकल्प है तो समय व्यर्थ गया, साधारण संकल्प है तो समय साधारण रीति से गया, और अगर समर्थ और शक्तिशाली संकल्प है तो समय समर्थ हो गया, शक्तिशाली हो गया। इसलिए हम जो इतने ऊंचे विद्यार्थी हैं, हमको हर समय अपने आप से एक सवाल पूछने की आदत डाल लेनी चाहिए। मैं क्या सोच रहा हूं, मैं क्या सोच रहा हूं, थोड़ी थोड़ी देर में अपने आप से ये पूछना, इस समय मेरी बुद्धि में क्या चल रहा है, इस समय मेरा ध्यान कहाँ है। फिर जो बात आप सोच रही हैं, गंभीरता से सोचो, इसमें मेरी कमाई जमा हो रही है कि घाटा हो रहा है। एक बात सोचनी जरूरी है क्या, या इसको सोचे बिना मेरा काम चल सकता है? ये एक ताकत ऐसी है जिसके ऊपर हमारा पूरा अधिकार है। मौसम पर हमारा अधिकार नहीं, लोगों पर हमारा अधिकार नहीं, बदलते समय पर हमारा अधिकार नहीं, लेकिन एक चीज पर हमारा पूरा अधिकार है। कौन सी चीज पर? हमारी अपनी सोच पर। उसकी तो मैं मालिक हूं, तो जिसकी मैं मालिक हूं उस पर मुझे पूरा नियंत्रण रखना, वो मेरे नियंत्रण से बाहर ना जाए। और जिसकी मैं मालिक नहीं हूं उसे मुझे नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करनी है, वो जैसा भी होता है होता रहे, लेकिन मेरा सोच मेरे हाथ में। तो बार बार अपने से पूछना, इस समय मेरा सोच कैसा है? मुझे अपने संकल्पों की दो क्वालिटी चाहिए, एक तो संकल्प बहुत धीरे धीरे चले और एक कम से कम चले। कम से कम सोचना है, जितना कम सोचेंगे उतना समय का खजाना सफल होगा, और जितना अधिक सोचेंगे उतना समय का खजाना ना सफल होगा। बाबा तो यहां तक कहती हैं कि ये जो कल्प नाम है ये भी संकल्प से ही बना है, ये पूरा जो कल्प है ये हमारे भिन्न भिन्न संकल्पों से बना है। 5000 साल में हमारे भिन्न भिन्न संकल्प है, जैसे भवन ब्रिक बाई ब्रिक बनता है, ईंट बाई ईंट मकान बनता है, इसी तरह से संकल्प बाई संकल्प पारा पूरा कल्प बनता है। और जब एक प्रकार के संकल्प पूरे हो जाते हैं, रिपीट होते हैं, तो हम कहते हैं कल्प की रिपीटेशन हो रही है, रिपीट हो रहा है, वही संकल्प फिर रिपीट होंगे, वही संकल्प फिर रिपीट होंगे। तो इतना महत्व है संकल्प का। और फिर संकल्प से भगवान ने सृष्टि रची, वाणी से भगवान ने सृष्टि रची नहीं, कर्म से भगवान ने सृष्टि रची नहीं, संकल्प से सृष्टि रची। इसका मतलब संकल्प में इतनी ताकत है कि वो सृष्टि रच देता है। अब अगर हम कहें जी हमने तो संकल्प ही किया था, बोला तो कुछ था ही नहीं, कर्म तो किया ही नहीं था, अरे भाई सृष्टि तो आपने रच ली, संकल्प करके, क्योंकि सृष्टि रचने के लिए वाणी और कर्म नहीं चाहिए, संकल्प ही चाहिए। तो आपने कौन सी सृष्टि रची? सतयुगी सृष्टि रची, त्रेता युगी रची, द्वापर युगी रची या कलयुगी रची? कौन सी रची? संकल्पों से ही तो सृष्टि हम रच रहे हैं, प्रतिपल रच रहे हैं। तो इतना महत्व संकल्प का है, तो क्या इतना महत्व जानने के बाद भी अब अपने संकल्प को बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे, या ऐसे ही ढीला छोड़ देंगे? ठीक है, धीरे धीरे बदल जाएंगे। संकल्प तो इतनी पावर है, जैसे मान लीजिए हमारी थाली में हम खाना खाते हो और कोई चीज आ गिरे, तो हम ये थोड़े कहते हैं ठीक है धीरे धीरे उठा देंगे इसको, क्या करते हैं? एक सेकंड में या तो थाली कोई फेंक देंगे, नहीं तो अगर कोई अनचाही चीज आ गई तो सोचते थोड़ी। तो यहां अनचाहा संकल्प आ गया तो उसको भी क्या करेंगे? उसको भी तो सेकंड में निकालेंगे, क्योंकि संकल्प से सृष्टि रची जा रही है। मेरी सृष्टि मेरे संकल्पों से रची जा रही है। मैं आज जो भी कुछ हूं मेरे संकल्पों का परिणाम है। इसलिए जीवन को बनाने वाले भी संकल्प है। तभी तो लोग कहते हैं एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। हर घड़ी आप सोच रही हैं और हर घड़ी आप बन रही हैं। आपका सोच हर घड़ी आपको घड़ रहा है। जैसे मूर्तिकार हथौड़ी से मूर्ति घड़ता है, मूर्ति टेढ़ी बनी या सीधी बनी, उसने हथौड़ी कहाँ लगाई? इधर लगाई, उधर लगाई। हमने संकल्प कैसा किया? सीधा संकल्प किया, समर्थ संकल्प किया, साधारण संकल्प किया, वैसी हमारी मूर्ति बन गई। तो मेरी मूर्ति बनाने वाली हथौड़ी मेरे हाथ में है और वो हथौड़ी है मेरा संकल्प। मैं उसको कैसे चला रही हूँ, वैसी वैसी मेरी मूर्ति घड़ी जा रही है। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे संकल्प का बड़ा महत्व है। एक संकल्प में इतनी ताकत है कि सारे संसार में क्रांति पैदा कर सकता है। तो हम बच्चों को अपने संकल्प बहुत समर्थ बनाने हैं, शक्तिशाली बनाने हैं, कम संकल्प में अधिक सिद्धि प्राप्त करनी है। संकल्प कम हो और प्राप्ति अधिक हो तो समय का खजाना सफल हो जाएगा। इस छोटे से युग में हम 5000 साल के लिए कमाई जमा कर लेंगे। जैसे तीर्थों पे जाते हैं ना, तो लोग कहते हैं, कई बार हम कहते हैं भाई आप ये चीज महंगी क्यों दे रहे हो, तो वो कहते हैं बहन जी ये तीर्थ पे केवल 2 महीना मेला लगता है, तो 2 महीने में हमको 12 महीने की कमाई करनी है। तो हम क्या करेंगे? चीज महंगी तो देंगे, तब तो 12 महीने की कमाई होगी। तो वो 2 महीने में तीर्थ पे रहने वाले लोग, क्योंकि तीर्थ मान लो 2 महीना ही चालू होता है, तो 2 महीने में 12 महीने की कमाई करते हैं। और हम बच्चे इस छोटे से संगम युग में 5000 साल की कमाई करते हैं। बाबा ने कहा ना पूरा कल्प चलती है। तो सोचो हमारी ये दुकान, हमारा ये संगम युगी पुरुषार्थ का समय कितना इम्पोर्टेंट है। हमको कैसे एक एक संकल्प की बचत करनी चाहिए, एक एक सेकंड की बचत करनी चाहिए, ताकि 5000 साल में हमारा खाता कभी खुटे ना, बीच में ख्याल ना आए खुट गया आप कहाँ से लाएं, पूरा 5000 साल तक चले और उसके बाद बाबा फिर से हमारा खजाना भरने के लिए आ जाए। ये तब होगा जब हम 1 सेकंड को 1 साल के बराबर कीमत देंगे। करेंगे ना ऐसा सभी? थैंक यू। ओम शांति।
गुजरते जा रहे पल प्रभु की यादों से सफल कर ले, गुजरते जा रहे पल प्रभु की यादों से सफल कर ले। चलो आनंद रस से मन तरल कर ले, सरल कर ले। गुजरते जा रहे पल गुजरते जा रहे पल।
वतन पान पिंजरे से निकल चलने गुजरते जा रहे पल
कर ले सरल कर।